الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگو بھائیو اور دوستو اللہ جل جلالہ من والہو نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. انسانی زندگی اگر غور سے دیکھی جائے اس کے بچپن سے لے کر اس کی زندگی میں پروان چڑھنے تک عمر کے ہر حصے میں انسان کی خواہش، انسان کے ارمان، انسان کی چاہتوں کا دائرہ الگ الگ ہوتا ہے. گود کا وہ چھوٹا سا بچہ، شیرخوار دودھ پیتا بچہ، اس شیرخوار اور دودھ پیتے بچے کی ارمانوں خواہشوں کا خلاصہ صرف ایک دودھ کا باٹل ہوتا ہے کہ اگر اس کو دودھ کا باٹل مل گیا تو وہ اتنا مطمئن اور اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جیسے پوری دنیا کی بادشاہت مل گئی ہو، اسے کچھ اور نہیں چاہیے. वही बच्चा जब जरा परवान चढ़ता है, अब रेंगने और चलने के काबिल हो जाता है, तब वो बच्चा दूध के बाटल पर मुतमईन नहीं होता, उसको कुछ और चाहिए। उसको चंद खिलौने चाहिए। वो चंद खिलौने अगर उसके सामने डाल दिए जाएं, तो वो बच्चा उन खिलौनों में इतना मगन हो जाता है कि उसे दुनिया याद नहीं रहती। वही बच्चा जब और जरा बड़ा होता है, तो घर के अंदर के वो जो छोटे छोटे खिलौने हैं, उन खिलौनों से उसका दिल नहीं भरता, उसे कुछ और चाहिए। उसे बाहर खेलने के लिए वक्त चाहिए, बाहर दौड़ने भागने के लिए मौका चाहिए, बाहर खेलने का सामान चाहिए। और अगर उसको बाहर खेलने के लिए छोड़ दिया जाए, तो ना उसे खाना याद रहता है, ना घर याद रहता है, ना माँ याद रहती है, ना बाप याद रहता है, वो उसी में गुम हो जाता है। वही बच्चा जवान होता है, जवान होने के बाद जवानी की उम्र को जब पहुंचता है, तो घर के सारे अफराद, खानदान और रिश्तेदार सब ये सोचने लगते हैं कि अब बच्चा जवान हो गया है, इसके लिए कोई खूबसूरत दुल्हन। खुद उसके दिल दिमाग और उसके ख्वाबों और सपनों में भी कोई ना कोई रहती है, और उसके भी अरमान यही बनते हैं कि कहीं ना कहीं निकाह करना है, शादी करना है। तो निकाह और शादी, ये गोया अरमानों का खुलासा हो जाता है जवानों का। शादी हो गई और उस नौजवान लड़की को एक नौजवान लड़का मिल गया, नौजवान लड़के को एक जवान लड़की मिल गई, यहां पर अरमानों का सिलसिला खत्म नहीं होता है, बल्कि एक नई दुनिया शुरू होती है। चंद दिनों के गुजरने के बाद ही करीबी रिश्तेदार, जान पहचान वाले, ताल्लुक वाले, दोस्त अहबाब लड़के से भी खामोशी से पूछते हैं, लड़की से भी मालूम करने की कोशिश करते हैं कोई खुशखबरी। अगर लड़की जवाब देती है कि हाँ, और लड़का जवाब देता है कि हाँ, तो रिश्तेदार मुतमईन हो जाते हैं। और अगर दोनों की तरफ से जवाब ये मिलता है कि अभी कुछ आसार नहीं है, तो फिर करीबी रिश्तेदार, ताल्लुक वाले, दोस्त अहबाब सब आहिस्ता आहिस्ता राय मशवरे देना शुरू कर देते हैं कि ये आजमा के देखिए, फलां डॉक्टर से मिल के देखिए, फलां हकीम साहब से बात कीजिए, और भी देर हो रही हो तो किसी आमिल से तावीज ले लीजिए। यानी जिंदगी का खुलासा यह बन जाता है कि शादी हुई है तो औलाद होना चाहिए, और अगर औलाद हो जाती है, औलाद के आसार नुमाया हो जाते हैं, तो तसल्ली और इत्मीनान हो जाता है। और अगर औलाद के निशान और आसार नजर नहीं आते, तो सारा खानदान, सारे रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं। और औलाद जब होती है, तो औलाद के होने के बाद इंसान की सोच बदल जाती है, इंसान के अपने अरमान और ख्वाहिशें बदल जाती हैं। अब जिससे पूछो वो यही कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए जमा रहे हैं, ये जो कुछ बना रहे हैं वो सब अपने बच्चों के लिए है, ये घर बच्चों के लिए, ये दुकान बच्चों के लिए, ये फैक्ट्रियां बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए। कि माँ बाप के अरमान अब खत्म हो गए हैं, अब जो अरमान, जो ख्वाब उन्हें देखना है, वो अपने ख्वाब नहीं बल्कि अपने बच्चों के ख्वाब उन्हें देखना है। औलाद अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। जिस घर में औलाद हो, वहां की महक, वहां की चहक, वहां की रौनक, वहां की रोशनी, वो अलग ही अंदाज की होती है। बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो घर का हर बड़ा छोटा बन जाता है, बच्चों को बच्चों के अंदाज में उनकी उसी तुतलाती जुबान में उनसे बात करता है, उनके साथ वक्त गुजारता है, और बच्चों का परवान चढ़ना माँ बाप के दिलों को राहत जी सुकून पहुंचाता है। उनको बढ़ता हुआ देखकर माँ बाप खुश होते रहते हैं। अल्लाह जल्ले जलाला मन वालों ने भी कुरान पाक में यह बताया और समझाया कि औलाद तुम्हारी दुनियावी जिंदगी की रौनक है, अपनी रौनक बढ़ा लो। लेकिन अल्लाह जल्ले जलाला मन वालों ने एक बड़े अजीब अंदाज में कुरान पाक की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, उस आयत में अल्लाह ताला ने बड़ा अलबेला अंदाज इख्तियार किया है और औलाद की तरबियत की तरफ तवज्जो दिलाई है, एहसास दिलाया है। अल्लाह ताला मुझसे आपसे हम सब से पूरी दुनिया के मुसलमानों से हर कुरान पढ़ने वाले से अल्लाह ताला एक सवाल कर रहे हैं। अल्लाह जल्ले शानो पूछते हैं, हम कुंतुम शुहादा इद हदर याकूब अल मौत। अल्लाह ताला पूछते हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ तो आप हजरात मौजूद थे? ये मुझसे आपसे अल्लाह पूछ रहे हैं कि हजरत याकूब का जब इंतकाल हुआ तो आप मौजूद थे? जी थे आप हजरात, हम तो नहीं थे जी। हजरत याकूब का कब इंतकाल हुआ? अभी तो हम दुनिया में अभी तो आए हैं। हजरत याकूब के इंतकाल के वक्त पर हम कहाँ मौजूद थे? और जाहिर बात है कि अल्लाह को मालूम है हम नहीं मौजूद थे, फिर अल्लाह जल्ले शानो हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि तुम मौजूद थे? ये सवाल अल्लाह हमसे क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जब भी इस तरह का सवाल किया जाता है, फलां जगह आप मौजूद थे, जब यह सवाल किसी से किया जाता है तो उसके जहन में एक चीज उभरती है, वो ये पूछता है वहां क्या हुआ जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वहां मौजूद थे जी। तो अल्लाह ताला यही सवाल हमारे जहनों में उभारना चाहते, कि हमारे जहनों में ये सवाल उभर जाए कि परवरदिगार हजरत याकूब के इंतकाल के वक्त पर क्या हुआ जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम वहां मौजूद थे। तो ये सवाल जब हमारे दिल दिमाग में उतरा तब अल्लाह जल्ले जलाल मन वालहु जवाब इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इज काल अली बनी ही, हजरत याकूब ने मरने से पहले जब आखिरी सांसें चल रही थी और सांस की डोर कभी भी कटने वाली थी, उस मोड़ पर उस मौके पर हजरत याकूब ने अपने बच्चों को जमा किया और कुरान में हम पढ़ते हैं और हम सुनते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे थे, 12 जवान बच्चों को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इकट्ठे किया, जमा किया, और जमा करके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सब बच्चों से एक सवाल किया, अपने बच्चों से ये कहा कि क्या भरोसा मेरी जिंदगानी का, मैं भी बुलबुला हूं एक पानी का। हम कि किसी भी किसी की भी जिंदगानी का क्या भरोसा है, हर इंसान दुनिया में एक पानी के बुलबुले की तरह से है, उभरता है, डूब जाता है, खत्म हो जाता है। तो हजरत याकूब ने पूछा, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं और मरने से पहले तसल्ली करना चाहता हूं और मरने से पहले इत्मीनान करना चाहता हूं, उसी इत्मीनान और तसल्ली के लिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मा ताबुदून मिन बादी, मैं तो अब जा रहा हूं, तुम मुझे बताओ कि मेरे दुनिया से चले जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसके सामने सर झुकाओगे, किसकी परस्तिश करोगे, किसकी अजमत, किसकी बड़ाई अपने दिल में लेके फिरोगे? क्या पीला देख के फिसल जाओगे या उजला देख के उछल जाओगे? आखिर तुम्हारी जिंदगी का मेयार क्या होगा, किसके सामने सर झुकाओगे? ये सवाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 12 जवान बच्चों से किया। बच्चों की तरबियत हुई थी, आजमाइशों से गुजरे थे और फिर माशाल्लाह अल्लाह ने उनको निखार दिया था, सिंघार दिया था, हसद के आजमाइश से गुजर कर जी अल्लाह जल्ले शानहु ने उनकी तरबियत की थी। इसलिए हजरत याकूब के इंतकाल से पहले जब हजरत याकूब ने पूछा तो सब बच्चों ने मिलके जवाब दिया कि नाबुद इलाह का व इलाह आबाई का इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक इलाहो वाहिदा। क्या अब्बा जान आप तसल्ली और इत्मीनान रखिए कि हम आपके और आपके अब्बा और आपके दादा जान हजरत इस्माइल और इसहाक और हजरत इब्राहिम उनके खुदा जो एक अकेला परवरदिगार है हम उसी की इबादत करते हैं, उसके अलावा और किसी की इबादत नहीं करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का यह किस्सा अल्लाह ने मुझे सुनाया, आपको सुनाया, हम सबको अल्लाह ताला ने किस्सा सुनाया है। और ये किस्सा सुनाकर अल्लाह ने हमें भी बताया जी कि हम भी यही सोचें, क्या भरोसा है मेरी जिंदगानी का, मैं भी तो बुलबुला हूं एक पानी का, ये मैं भी जा सकता हूं किसी भी लम्हे जा सकता हूं, तो जाने से पहले मुझे भी इत्मीनान कर लेना चाहिए, अपने बच्चों को बिठाकर मुझे भी तसल्ली कर लेना चाहिए, मुझे भी अपने बच्चों को बिठाकर एक दफा यही सवाल दोहराना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए कि मा ताबुदून मिन बादी, मैं भी चला जाऊंगा, तुम बताओ तुम किसकी इबादत करोगे। यह हजरत याकूब का सवाल अल्लाह ने हमारे सामने जिक्र करके हमसे ये कहा है कि हम भी अपने बच्चों को कभी बिठा कर ये पूछेंगे, हम जरूर पूछेंगे। लेकिन एक एक जाप्ता है, एक कानून है, दुनिया का एक दस्तूर है, उस दस्तूर को समझकर फिर हमें सवाल करना चाहिए। दुनिया का दस्तूर यह है कि सवाल जवाब सिखाने के बाद किया जाता है, 10 महीने जवाब सिखाया जाता है उसके बाद सवाल किया जाता है। दुनिया में कभी भी सवाल जवाब सिखाए बगैर नहीं किया जाता, और जवाब सिखाए बगैर अगर आप सवाल करें तो जवाब न देने वाला नादान नहीं है, सवाल करने वाला नादान है। ये जवाब सिखाए बगैर अगर कोई सवाल कर दे तो वो सवाल करने वाला नादान है, जवाब न देने वाला नादान नहीं है। तो अल्लाह जल्ले शानहू ने हमसे ये कहा कि सवाल करो, लेकिन सवाल करो से पहले अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि अपनी औलाद को जवाब सिखाओ कि मा ताबुदून मिन बादी। ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपने छोटों को, अपने मातहतों को, सबको सिखाने की जरूरत है, कि हर एक के दिल में ये बिठाने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है कि किसकी इबादत की जानी चाहिए, किसके सामने सवाल करना चाहिए, किसके सामने हाथ फैलाना चाहिए, किसकी बड़ाई और अजमत को दिल में बिठाना चाहिए, किसके सामने सर झुकाना चाहिए, किसके सामने अपने आप को पूरे तौर से बिछा देना चाहिए। ये जवाब है, और इस जवाब को सिखाना हर मुसलमान माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हर मुसलमान माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि नाबुदु इलाह का व इलाह आबाइका। ये जो बच्चे, जो हजरत याकूब के बच्चों ने जवाब दिया, वो जवाब हमारे बच्चों की जुबान से निकले, उसके लिए उनकी तरबियत है जी। ये दीनी और ईमानी तरबियत जी, एक है तालीम, तालीम में माशाल्लाह हमारा जहन बना है, और हम सब माशाल्लाह जी पूरी उम्मत में, आज मिल्लत में एक शौक है, एक जज्बा है, एक वलवला है, अंदर से माशाल्लाह एक उमंग है। और बहुत सारे माँ बाप जिन्होंने खुद नहीं पढ़ा, उनके दिलों में भी यह अरमान है कि हम तो न पढ़ सके लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे जी, और पढ़ा रहे हैं अच्छे से अच्छा, उम्दा से उम्दा, बेहतर से बेहतर, आला से आला तालीम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकार नहीं है। उम्दा से उम्दा, अच्छी से अच्छी, आला से आला दर्जे की तालीम, मेयारी दर्जे की तालीम दिलाने की जरूरत है। बड़ी खुशी की बात है जी, कल ही माशाल्लाह हमारे पूरे सूबे के SLC के जी रिजल्ट्स आए हैं, जिन बच्चों ने माशाल्लाह SLC पास किया है उन सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद है। अल्लाह जल्ले शानो उन बच्चों को, उनके वालिदैन को मुबारक फरमाए, और आगे बढ़ने की अल्लाह ताला उनको तौफीक और जी तरक्की के अल्लाह ताला उनके लिए असबाब पैदा फरमाए। تعلیم کے اعتبار سے یہ ہم متوجہ ہیں اور کوشش اور پوری طاقت لگا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی دینی اور ایمانی تربیت کی ضرورت ہے کہ بچوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھے، اللہ جل جلالہ من والہ سے محبت ان کے دلوں میں اترے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ان کے دلوں میں پیدا ہو، اور یہ ایمان کی جو جڑیں اور ایمان کی جو یہ بنیادیں ہیں، ان ایمانی بنیادوں کو ان کی زندگی میں اتارنے، راسخ اور مضبوط کرنے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے، والدین کی ہوتی ہے، یہ اپنے بچوں میں اس دینی اور ایمانی تربیت، دینی اور ایمانی غیرت کے پیدا کرنے کے لیے ہمیں ان کو یہ آداب کا سکھانا، ضروری چیزوں کا بتانا، اور بنیادی طور سے ان کو دینی ایمانی تربیت کو لے کر چلنا۔ جیسے ہم بار بار سنتے ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی تربیت کی، ان کو سمجھایا، وہ دن بھر مدرسہ پڑھ کے واپس آتے تھے، واپس آنے سے پہلے ان کی والدہ اپنے بچے کے لیے توشہ تیار کر کر، کھانے کا سامان بنا کر والدہ ایک جگہ چھپا کے رکھ دیتی، اور رکھنے کے بعد بچہ جب سکول سے مدرسے سے واپس آتا تو والدہ بچے سے کہتی کہ کھانا ہمارے پاس کہاں ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، دو رکعت نماز پڑھو، دعا کرو، اور دعا کر کے اللہ سے اچھے انداز میں مانگو، اللہ تمہیں ضرور کھلائیں گے۔ بچے کی تربیت ہو رہی ہے جی، اسی انداز پر بچہ جی دو رکعت وضو کرتا ہے، دو رکعت نماز پڑھتا ہے، اور اللہ سے مانگتا ہے کہ پروردگار بھوکا ہوں، مجھے کھلا دیں۔ اس دعا کے مانگنے کے بعد ماں کہتی ہے تلاش کرو، کہیں نہ کہیں اللہ نے تمہاری روزی رکھی ہوگی۔ تو وہ بچہ جا کے تلاش کرتا ہے، کسی محراب میں کسی جگہ پر کھانا رکھا ہوا ہے، بچہ خوش ہو کے وہ توشہ اٹھاتا ہے اور کھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تربیت۔ ایک دن ماں کو کہیں جی کسی کام سے جانے کا اتفاق ہوا اور واپس لوٹنے میں دیر ہو گئی، بچہ مدرسے سے واپس آ چکا تھا، اور ماں نے اپنے بچے کے لیے محراب میں یا کہیں کھانا چھپا کے نہیں رکھا تھا، تو ادھر ماں کی تڑپ، ماں کی بے چینی، اور ماں کا ایک عجیب انداز سے اللہ سے تعلق اور گڑ گڑانا کہ پروردگار اتنے سالوں سے میں نے جو اپنے بچے کا ذہن بنایا اور اس کے دل دماغ میں یہ بٹھایا کہ تو ہی دینے والا ہے، اور اگر آج توشہ اسے نہیں ملے گا تو اس کا دل اور اس کا عقیدہ اور اس کا یقین بگڑے گا کہ پروردگار اللہ کی طرف سے نہیں ماں دیا کرتی تھی، آج ماں نہیں تو توشہ نہیں، اے اللہ اس یقین کے بگڑنے سے اس کی حفاظت کر لے۔ یہ حضرت آئے، وہی چھوٹا سا بچہ اپنے معمول کے مطابق اس نے دو رکعت نماز پڑھی، توشہ تلاش کیا، نہیں ملا۔ ماں نے سمجھایا تھا کہ بیٹے اگر کبھی توشہ نہ ملے تو یہ سمجھنا کہ شاید دعا میں کمی ہے، وضو میں کمی ہے، نماز میں کمی ہے۔ تو بچے نے دوبارہ وضو کیا اچھے سے، پھر دوبارہ تسلی سے نماز پڑھی، پھر جو ہے دل لگا کر اللہ سے دعا مانگی، پھر اب جا کے جو تلاش کیا تو اللہ نے غیب کا دروازہ، اللہ نے اپنے خزانے کا دروازہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے لیے کھول دیا تھا کہ توشہ اور کھانا مل گیا، اللہ نے نواز دیا۔ یہ دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے خزانے کے دروازے کھل جائیں تو پھر وہ دروازے بند نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ماں نے آ کے دیکھا تو بچہ بیٹھ کے توشہ کھا رہا ہے۔ ماں نے پوچھا کہاں سے ملا بیٹے، کہا کہ اما جان آج ذرا نماز میں غفلت ہوئی تو مجھے دو بار تین بار نماز پڑھنا پڑا، اور دو تین مرتبہ کی نماز کے بعد مجھے توشہ مل گیا، لیکن اما جان کل پرسوں اس سے پہلے جو کھانے ملتے تھے آج کے کھانے میں اور اس کھانے میں بڑا فرق ہے، آج کے کھانے میں جو لذت ہے اور آج کے کھانے میں جو مزہ ہے وہ مزہ پچھلے کھانوں میں نہیں تھا۔ پر جی اما سے کہا کہ آج کا کھانا بڑا مزیدار کھانا ہے، بڑا لذیذ کھانا ہے۔ تو یہ تربیت ہوتی ہے جی کہ ماں باپ اپنے بچوں کے رخ کو دین کی طرف ایمان کی طرف موڑنے کی کوشش کریں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بچے کو چھوٹی عمر میں گیلان سے بغداد بھیجا اور وہاں پہنچ کر انہوں نے دین کا علم حاصل کیا, لیکن بچے کو جب رخصت کیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کرتے ہوئے ماں نے تھوڑے سے پیسے بغل میں جیب بنا کر جیب میں وہ پیسے رکھ کے بچے سے کہا کہ بیٹے پیسے یہاں ہیں, لیکن بچے سے یہ تاکید نہیں کی پیسے سنبھال کے رکھنا ہوں, بچے سے کہا بیٹے زبان سنبھال کے رکھنا ہوں, یہ زبان سنبھال کے رکھنا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہو گئے, راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا, گھیر لیا چاروں طرف سے, سب کا مال لوٹ لیا, جس کسی کو کھڑا کر کے پوچھتے تمہارے پاس کچھ ہے تو ہر آدمی یہی جواب دیتا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, تلاش کرنے پر بہت کچھ نکلتا, تو سب کا لوٹ لیا. جب سب کا لوٹ کر چھوٹا سا بچہ ملا, اس بچے کو کھڑا کر کے ایک ڈاکو نے پوچھا دی تیرے پاس بھی کچھ ہے, تو اس بچے نے کہا ہاں ہے. اب تک ہر آدمی جواب دے رہا تھا نہیں ہے, بچے نے جواب دیا ہاں ہے, تو وہ ڈاکو ذرا پریشان ہوا, اس نے پوچھا کہاں ہے, دیکھو یہاں ہے, ہاتھ رکھ کے دیکھا تو اتنا پیسہ ہے. تو ڈاکو حیران ہو کے اس نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے لے جا کے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا سردار صاحب اس بچے سے پوچھئے اس کے پاس کچھ ہے. سردار نے پوچھا بیٹے تیرے پاس کچھ ہے, تو حضرت نے جواب دیا کہ ہاں ہے. اس جواب پر ڈاکوؤں کے سردار کا سر بھی چکرا گیا, اس نے پوچھا جی کہاں ہے, کہاں یہاں رکھا ہے, ہاتھ رکھا تو بہت پیسہ ہے. سردار نے حیرانی سے پوچھا بیٹے اب تک ہم نے جن سے بھی پوچھا وہ سب یہی کہتے تھے نہیں ہے, تم بھی تو یہ جواب دے سکتے تھے کہ نہیں ہے, تم نے کہ یہ کیوں جواب دیا کہ ہاں ہے, تم نے کیوں بتا دیا؟ تو اس بچے نے جو جواب دیا وہ سننے کا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس ڈاکوؤں کے سردار سے کہا میری اماں نے مجھے تاکید کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, اس لیے کہ جھوٹ بولو گے تو زبان پر جو جھوٹ کا داغ اور دھبا لگے گا وہ داغ اور دھبا سات سمندروں کے پانی سے دھل کے صاف نہیں ہو سکتا, اس لیے زبان سے جھوٹ نہیں بولنا. میں نے دکھا دیا وہ ایک جملہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اس ڈاکوؤں کے سردار کو توبہ کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بن گیا. اس کے دل میں احساس ہوا اتنا چھوٹا سا بچہ اللہ سے ڈر رہا ہے تو میں کیوں اللہ کا باغی بنوں, اللہ کا نافرمان بنوں؟ تو ماؤں نے تربیت کی تھی اور ان کا ذہن دل دماغ بنایا تھا, احساس دلایا تھا کہ پیسہ سنبھالنا نہیں, پیسہ بچانا نہیں ہے بلکہ زبان سنبھالنا, دل سنبھالنا ہے. جی آج ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ جی ہماری عادت ہے عام طور سے گھروں میں یہ انداز ہم سب کا تربیت کا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں 500 روپے کا سکہ دیتے ہیں, 10 روپے کا نوٹ دیتے ہیں, کم و بیش پیسے بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں. بچے کے ہاتھ میں پیسے دے کر ہماری زبان سے 2 مرتبہ 4 مرتبہ جی 5-6 مرتبہ یہ جملہ نکل جاتا ہے گھٹ پکڑ کے رکھنا, سنبھال کے رکھنا, جی بچا کے رکھنا, یہ گھٹ پکڑ کے رکھنا, سنبھال کے رکھنا, بچا کے رکھنا, یہ جو ہم بار بار بچوں کے سامنے دہراتے ہیں تو بچوں کے دل دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ زندگی میں سنبھال کر رکھنے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ پیسہ ہے. یہ پیسہ تو سنبھال کے رکھنا چاہیے, دنیا کی کوئی اور چیز ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے, وہ جی وہ ہاتھ سے جا سکتی ہے, اس کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے. جی نمازیں چھوڑ دو, سچ بولنا چھوڑ دو, جی عہد وفا کرنا چھوڑ دو, اپنی زبان کی حفاظت کرنا چھوڑ دو, یہاں تک کہ خود ماں باپ کی خدمت چھوڑ دو. کہ ماں باپ کی خدمت کا مطلب اور خلاصہ کیا کہ ماں باپ کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے उनके उनको उनकी उनकी जरूरतों के पूरा करने के लिए कुछ पैसे का कुछ रकम का इंतजाम कर दिया तो शायद यही सारी बड़ी खिदमत हो गई। ये बच्चों को खुद यह एहसास नहीं, ये अंदाजा नहीं है कि बचपन में जैसे माँ बाप ने तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया था, तुम जब गिरने लगे तो तुम्हें संभाला था, गिर के जब तुम जो है रोने लगे तो तुम्हें उठाकर अपने सीने से लगाकर तुम्हें जो है मुतमईन किया, तुम्हें तसल्ली दी, तुम्हें दी इत्मीनान दिलाया था, तुम्हें सीने से लगाया था। बुढ़ापे में यही बचपन वापस लौट कर आ जाता है। अल्लाह जल्ले जलाला मन वालहु कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि बचपना माँ बाप के लिए नहीं, हर बुढ़ापे के में बचपन वापस लौट के आ जाता है और वो बचपन की सारी चीजें जी वो बुढ़ापे में होने लगती हैं। माँ बाप के पैर जी लड़खड़ाने लगते हैं, उन लड़खड़ाते कदमों को किसी सहारे की जरूरत है। सहारा दीवार भी दे सकती है, लाठी भी सहारा दे सकती है, लेकिन दीवार और लाठी के सहारे से वो तसल्ली नहीं मिलती जो तसल्ली बेटे के सहारे से मिलती है। जी बेटा अगर सामने आ जाए, हाथ पकड़ ले, सहारा दे दे, जी सिर्फ बाहर रहकर पैसा पहुंचा दे नहीं बल्कि मौका पड़े तो अपने माँ बाप का सहारा बन जाए, उनके रात में उठकर लड़खड़ाते कदमों में जो उनका हाथ पकड़ ले, उनको जरूरत से फारिग करा दे, तसल्ली से वापस लाकर उनको बिस्तर पर लिटा दे, ये उनकी तकलीफ में दो लम्हे बाजू बैठकर उनसे बात कर ले। हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के कुर्ब की जो नशानियां बयान फरमाई हैं कि कयामत के करीब क्या क्या होगा, इसको जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि अक्का उम्महु अता ज़ौजतहु व अक्का उम्महु अदना सदीकहु व अक्सा अबाहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मिजाज बिगड़ेगा और मिजाज के बिगड़ने का नतीजा क्या होगा, ये बच्चे अपनी माओं से ये ऐसे बात करेंगे जैसे नौकरों से बात की जाती है, बुलंद आवाज में जोर जोर से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए थे, अल्लाह के नबी ने जवाब इरशाद फरमाए, अखीर में अल्लाह के रसूल से हजरत जिब्राइल ने पूछा था कि कियामत कब आएगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आपको जितना मालूम है उतना ही मुझे भी मालूम है, आपको नहीं मालूम कब आएगी, मुझे भी नहीं मालूम कब आएगी। तो हजरत जिब्राइल ने पूछा कोई नशानी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब माएं अपने मालिक को जन्ने लगेंगी तो फिर समझ जाओ कि कियामत आ जाएगी। थी फरमाया इज़ा तलिद अल-अमतु रब्बतहा, कि जब मालिक अपने माँ अपने मालिक को जने या मालिकन को जने। हजरत उलमा इसकी तशरीह करते हैं, बहुत सारी शुरुहात बहुत सारी तशरीहात इसकी हैं, लेकिन आज के जमाने के अतबार से सबसे उम्दा जो उलमा ने बात इरशाद फरमाई उसका खुलासा यही है कि माँ जी माँ के साथ में बच्चे ऐसा बर्ताव करें जैसे नौकरों के साथ होता है। ये गोया माँ ने अपने मालिक को या मालिकन को जना है, ये बेटी अपनी माँ से ऐसे बात करती है जैसे नौकरानी से बात की जा रही हो, या बेटा अपने अपनी माँ से ऐसा बात करता है जैसे नौकरानी से बात की जा रही हो, तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत आ गई। जिस जमाने में दुनिया में वजूद में लाने वाले माँ बाप की कदर नहीं है उस जमाने में इंसानों को आबाद रखने की जरूरत नहीं है, अब दुनिया को बर्बाद कर देना चाहिए, यह फैसला अल्लाह ताला ले लेते हैं। इसलिए जी आदाब के बड़ों के साथ, छोटों के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ कैसे बात करना, कैसे गुफ्तगु करना, कैसे खड़ना उनके सामने, कैसे पेश आना। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन तो सारे का सारा आदाब को कहते हैं। दीनदारी, मस्जिद में दाखिल होने के अदब है, सीधा पैर रखकर आओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के आओ, दरूद शरीफ पढ़ के आओ, मस्जिद में मस्जिद से बाहर जाने के आदाब है, माया पैर रख के जाओ जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के बाहर निकलो, दुआ पढ़ के बाहर निकलो जी, हर 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 मौके के आदाब है। और यही अदब सबसे बड़ा दीन है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफजल मिन अदबिन हसन। औलाद को हर माँ बाप कुछ ना कुछ दे के जाना चाहते हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों को खाली हाथ मंगता बनाकर छोड़कर नहीं जाना चाहते। हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम बहुत कुछ दे के जाए, दौलत दीजिए, जायदादें दीजिए जी, कंपनियां कारोबार छोड़ के जाइए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे उम्दा तोहफा, सबसे बेहतरीन तोहफा, सबसे आला जी तोहफा जो अपने बच्चों को आप दे सकते हैं, वो अच्छे आदाब हैं, अच्छा अदब, लोगों से पेश आने का सलीका, हर एक से बात करने का तरीका, बड़े छोटों का लिहाज, हर एक के साथ में पेश आने का रवैया, ये सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया, जिंदगी में पहले बेअदबी आती है, बड़ों का छोटों का लिहाज खत्म होता है, और जब बड़ों छोटों का लिहाज खत्म हो जाता है तो फिर बेहयाई आती है, बेहयाई, और जब आदमी बेहया बन जाता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। फारसी में कहते हैं, बेहया बाशोहर चेखाही कुन, जब आदमी बेहया बन जाता है अब वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये जिन 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 मकामात पर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां जी आदाब की उम्मीद नहीं है, वहां आदाब के सिखाए जाने का जी हमें अंदाजा नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को अपने घरों के माहौल में आदाब के सिखाने की जरूरत है। बड़ों छोटों का लिहाज, खाने का अदब, ये खाना कैसे खाना चाहिए, अल्लाह के नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने का तरीका बच्चों को सिखाया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बच्चा दो बच्चे बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे से कहा, दाहिने हाथ से खाओ। उसने दाहिने हाथ से खाना शुरू किया। एक और बच्चा था, उसको कोई तकलीफ नहीं थी दाएं हाथ में, उससे जब कहा, वो बाएं हाथ से खा रहा था, उससे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने कहा, मैं दाहिने हाथ से नहीं खा सकता, कोई तकलीफ तो नहीं थी, फिर भी उसने कहा बेअदबी से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं खा सकेगा। उसने कहा नहीं खा सकता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं खा सकेगा, मतलब फिर जिंदगी में कभी उसका दाहिना हाथ उठा नहीं। तो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, एक बच्चा रसूलुल्लाह के साथ में दस्तर पर बैठा है जी, बर्तन सामने रखी है, और वो बच्चा चारों तरफ उसका हाथ घूम रहा है, एक निवाला यहां से लिया, एक निवाला यहां से लिया, एक निवाला चारों तरफ उसका हाथ घूम रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल मिम्मा यलीक, बेटे सामने से खाओ। तो उस बच्चे ने सामने से खाया जी, दस्तर पर बर्तन बदला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खजूर होते थे, तो खजूर जो है लाके रखे गए, चार पांच किस्म के खजूर थे, कच्चे पक्के अधगदरे जी, दो तीन किस्म के अलग अलग अनवा के खजूर वो बर्तन में रखे थे। इसको अल्लाह के रसूल ने ताकीद फरमा दिया था कि सामने से खाओ, तो वो सामने के खजूर उठा के खा रहा था, लेकिन नजर उसकी पूरे बर्तन पर थी कि उधर भी कुछ खजूर हैं अलग किस्म के, इधर भी, वो चारों तरफ के खजूर उठा के खाना चाहता था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ताकीद फरमा दी थी सामने से खाओ, इसलिए सिर्फ सामने का खजूर खा रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब सिखाया, फरमाया, बेटे बर्तन में एक ही चीज हो तो सामने से खाओ, अगर बर्तन में चार पांच किस्म की चीजें हो तो तुम्हें जो पसंद हो जहां से चाहो वहां से उठा के खाओ। यह आदाब अल्लाह के रसूल ने सिखाए, खाने के आदाब जी, बैतुल खला जाने के आदाब, ये वो सब जरूरत की चीजें हैं जो हमें अपने बच्चों को अपने घरों में जिंदगियों में सिखाना चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यही वो सबसे उम्दा, सबसे कीमती और सबसे बेहतरीन तोहफा है जो माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं। अल्लाह मुझे आपको पूरी उम्मत को तौफीक नसीब फरमाए।